वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। आज हमारे आपके पास इतने सारे सवाल हैं, जिंदगी से जुड़े सवाल हैं, समाज से जुड़े सवाल हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भाग दौड़ इतनी है कि हम बहुत कुछ खोते जा रहे हैं। क्या हैं वो मूल्य जिन पर हमारी पुरानी पीढ़ी खड़ी थी? कहीं आज हम उन मूल्यों को भूलते जा रहे हैं या फिर उन्हें फिर से जिंदा कर सकते हैं? लिविंग वैल्यूज यानी कि उन मूल्यों को जीवंत करने की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे शांति की। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। माउंट आबू से हमारे साथ आई हैं ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन। शीलू बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत। और शीलू बहन के साथ सबसे बड़ी बात जो जुड़ी है उसके बारे में आपको बता दें कि 11 बरस की छोटी सी उम्र में जब पिता का साया नहीं रहा तब इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पिता श्री ब्रह्मा जी का सानिध्य मिला। और इतने सालों उनके साथ रहने के बाद ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूरी फिलॉसफी को जानते हुए एजुकेशन में किस तरह से वैल्यूज डाली जा सकती हैं उसका बहुत बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है शीलू बहन। तो शीलू बहन, आपसे शुरू करते हैं आज बातचीत का ये सिलसिला। और आज जब हम शांति की बात करते हैं तो थोड़ा पीछे चलते हैं, एंग्जाइटी की बात करते हैं, अशांति की बात करते हैं। समाज में आजकल इतना कुछ ऐसा हो रहा है जो कहीं ना कहीं हमारे मन को अशांत कर रहा है। सुबह मेड नहीं आई तो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं हम कि क्या करेंगे हम, और जैसे ही वो आती है उस पर बरस पड़ते हैं ना चाहते हुए भी। सड़क पर निकले, एक गाड़ी ने एक बाइक ने आके टक्कर की, टक्कर हुई या नहीं हुई लेकिन मारपीट ज़रूर शुरू हो गई। घड़ी पहनी है, लेट हो गए हैं, कहीं नहीं पहुँच पा रहे हैं, टेंशन एंग्जाइटी लेवल इतना ज़्यादा है। और अंदर से हम हर बार कह रहे हैं कि मुझे शांति चाहिए, गॉड आई वॉन्ट पीस। तो क्या हुआ ऐसा समाज में कि हम एक अशांत जिंदगी की तरफ दौड़ पड़े हैं?
बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वास्तव में क्या है, मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य ही भूल गया है। वो ये भी भूल गया है कि वो इस संसार में क्यों आया है, कहाँ से आया है, क्या उसे करना है, कहाँ जाना है। इसलिए गीत भी बड़ा सुंदर है, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना।
बहुत सुंदर, लेकिन हाँ ये तो तलाश है बिल्कुल
जी। तो इसलिए हम सब मुसाफिर हैं इस संसार में, हम ये भूल गए हैं। हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है, न कुछ लाए हैं न कुछ ले जाएंगे। भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर जाना है। ये दुनिया एक रंगमंच है, हम सब अभिनेता की तरह यहाँ पाठ बजा रहे हैं, ये सब भूल गए हैं।
लेकिन बहन शीलू, ये बात बिल्कुल सही बात है। मैं भी जानती हूँ, जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये याद नहीं रहती हमारे साथ, ये कंटिन्यूस चलती नहीं हमारे साथ। जब हम जिंदगी के एक एक पड़ाव पर हम पहुँचते जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि मैं क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ मैं या क्या कर सकता हूँ मैं। तो वही आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्यों ऐसा हो गया है कि हम वो भूल गए हैं कि मैं क्या हूँ।
ये क्यों भूल गए हैं, क्योंकि हम खुद को ही भूल गए हैं। जैसे कोई बच्चा एक मेले में अपने आप को भूल जाए, अपने पिता को भूल जाए, वो कहाँ है, क्यों है, ये सब भूल जाए तो वो रोने ही लगेगा, दुखी हो जाएगा, चिल्लाएगा, पुकारेगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि उसे करना क्या है। यही आज के मानव की हालत हो गई है, वो इस भूल भुलैया के खेल में आकर के सब कुछ भूल चुका है, इसलिए भटक रहा है, चिल्ला रहा है, दुखी हो रहा है, अशांत हो रहा है।
लेकिन उसके बावजूद अशांत है, सब कुछ है, तलाशता भी है कि मुझे शांति मिल जाए। क्या शांति पाई जा सकती है? और एक बात और, शांति क्या है, मैं कैसे डिफाइन करूं? मुझे शांति मिल भी जाएगी तो क्या मैं उसे जान जाऊंगी कि मैं शांत हो गई हूं, या मैं कुछ देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए तो मैं शांत हूं, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं अशांत हो जाती हूं। तो ये क्या शांति पाई जा सकती है, क्या शांति शाश्वत है, कंटिन्यूस रह सकती है?
बिल्कुल, शांति पाई जा सकती है और ये शाश्वत है और कंटिन्यूस रह सकती है, क्योंकि आपके भीतर ही है। अब जो चीज़ मेरे पास ही हो और मैं उसे बाहर ढूंढूंगी तो कैसे प्राप्त होगी? मान लीजिए आपकी चाबियां हैं और वो आपकी जेब में हैं, और आप सारा घर ढूंढ डालो, सब बिस्तरे ऊपर नीचे कर लो, कबर्ड ढूंढ डालो, कहाँ मिलेगी आपको चाबियां? वो तो आपकी जेब में पड़ी है। तो जो चीज़ आपके पास ही है आप उसे बाहर ढूंढ रहे हैं तो कैसे प्राप्त होगी? तो एक छोटा सा उदाहरण देते, एक व्यक्ति अपने घर में जाने के लिए दरवाजे पर चाबियां घुमाई ताकि दरवाज़ा खोल सके और चाबियां गिर गई। अब अंधेरा था तो उसे दिखाई नहीं दे रही थी कि चाबियां कहाँ हैं। बहुत ढूंढी मिली नहीं तो आखिर सोचा क्या करूं, तो स्ट्रीट लाइट जल रही थी तो वहीं चला गया और वहीं ढूंढने लग गया। लोगों ने पूछा क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो, तो कहा मेरे घर की चाबियां गुम हो गई। अच्छा तो वे भी मिल गए ढूंढने के लिए, लेकिन चाबियां तो मिले नहीं। तो आखिर किसी ने पूछ लिया कि भाई साहब पहले ये तो बताइए चाबियां गिराई कहाँ, तो कहा वो तो गिराई घर के पास। अब गिराई घर के पास और ढूंढ रहे हो बाहर, तो कैसे प्राप्त होगी, वहीं ढूंढो। कहते क्या करूँ, वहाँ तो अंधेरा है,
वहाँ रोशनी नहीं है।
तो अंधेरा है, रोशनी नहीं है, और यहाँ तो स्ट्रीट लाइट है, चकाचौंध है, रोशनी है, तो इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ। इसी प्रकार शांति है भीतर की और हम उसे ढूंढ रहे हैं बाहर, तो परिणाम स्वरूप वो बाहर क्योंकि चकाचौंध है, हम उसी में ही उसे ढूंढ रहे हैं, तो परिणाम स्वरूप वो कहाँ मिलेगी।
बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही कि जहाँ है ही नहीं वो चीज़, चाहे वो रोशन भी है, वहाँ तलाशने से कैसे मिलेगी।
जी
बहुत ही सुंदर आपने बात कही, और आप ये कह रही हैं कि हमारे अंदर ही है वो शांति जिसे हमें तलाशना है, लेकिन आपने ये भी साथ में कहा कि जहाँ पे चाबी गिरी है वहाँ अंधेरा था, तो कैसे तलाशेंगे अगर अंदर हमारे अंधेरा है, तो पहले
जी
उसे रोशन कैसे करेंगे।
बिल्कुल, आज अंदर अंधेरा है, माना हम अपने आप को ही भूल गए हैं। शांति किसे चाहिए यही पता नहीं है। हम कहते हैं मुझे शांति चाहिए, लेकिन मैं ही कौन हूँ। हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं और समझ रहे हैं मुझे शांति चाहिए, पर शरीर को शांति नहीं चाहिए। शरीर को तो हर वक्त हलचल चाहिए। आज एक घड़ी के लिए भी अगर दिल की धड़कन रुक गई, एक घड़ी के लिए भी ये नस चलनी बंद हो गई, तो आप बताइए इंसान तो मर जाएगा। और हम जीवन में शांति चाहते हैं, ये नहीं कि मरने के बाद शांति चाहते हैं। हम कहते हैं जीते जी शांति चाहिए। कई समझते हैं कि जीते जी तो शांति नहीं मिलेगी, शायद मरने के बाद मिलेगी। तो ये भी कह देंगे भाई जीवन में तो नहीं शांति मिलेगी, लेकिन मरने के बाद मिलेगी। तो हम कहते हैं कि वास्तव में जिसने जीवन में शांति अनुभव नहीं की ना, तो मरने के बाद भी नहीं मिलेगी। ये एक कड़वा सत्य है। क्यों? क्योंकि शांति मरने के बाद की अनुभूति नहीं है, ये तो जीवन की अनुभूति है। ये जीवन के अंत की अनुभूति नहीं है, पर ये जीवन के दौरान अनुभूति है। इट्स अ जर्नी, इन द जर्नी आई हैव टू एक्सपीरियंस पीस, नॉट एट द एंड ऑफ द जर्नी।
ब्यूटिफुल द वे यू एक्सप्लेन। नाउ वट आई वॉन्ट टू आस्क यू इज लाइक वट इज़ दैट एक्सपीरियंस, वो क्या एहसास है, क्या होगा मेरी इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में जब मैं शांत हो जाऊँगा, वो एहसास क्या होगा।
वास्तव में पहले हमें ये जानना होगा कि शांति की इच्छा कौन रख रहा है। शांति की इच्छा रखने वाली जो शक्ति हमारे भीतर है, हम मानते हैं वो है आत्मा। आत्मा की इच्छा है कि मुझे शांति चाहिए, परंतु विडंबना यही है कि जो वो इच्छा करती है उसके अंदर ही है। शरीर की शांति का अर्थ होता है मृत्यु। देखिए जब किसी की मौत होती है, मर जाता है, तो क्या कहेंगे, इनका देह शांत हो गया। अब देह शांत होने के बाद भी हम क्या कहते हैं, हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना। तो शांति किसको चाहिए, आत्मा को चाहिए। अब जिसमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है वो यही कहेगा शांति चाहिए, पर किसको चाहिए, ये आत्मा को चाहिए तो पता ही नहीं। और दूसरी बात है कि आत्मा के भीतर ही शांति है, वो भी आत्मा को पता नहीं है, इसलिए बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे जल शीतल होता है, जल गर्म नहीं होता है। गर्म तब होता है जब उसे अग्नि का समावेश दिया जाता है, लेकिन जब अग्नि निकाल दे तो जल फिर शीतल हो जाता है, क्योंकि यही उसका निजी स्वभाव है,
प्रकृति है
उसकी। जी इसी प्रकार आत्मा का भी जो मूल स्वभाव है वो शांति है। और अगर मैं ये निश्चय करती हूँ कि मेरा मूल स्वभाव शांति है, तो शांति का अनुभव मैं सहज कर सकती हूँ। एक बात ये। दूसरी बात, शांति या अशांति ये मन की स्थिति है। ये कोई बाह्य स्वरूप नहीं है, ये कोई चीज नहीं है जो हम बाजार से दुकान से खरीद सकते हैं, धन दे करके ला सकते हैं, या कोई मुझे मेरे हाथ में देगा लो ये शांति है। परंतु ये मन की स्थिति है। अगर मन में सकारात्मक विचार है, वो सकारात्मक विचार हमारे मन में शांति लाएंगे, और अगर मन में नकारात्मक विचार है वो अशांति लाएंगे। मिसाल के तौर पर अभी आपने कहा कि मानो कोई भिड़ंत हो गई, कुछ डेंट पड़ गया गाड़ी पर, और हम लड़ना शुरू कर देंगे, चाहे न भी पड़ा हो तो भी लड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम यही देख रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, क्यों इसने ऐसे किया, क्यों इसने ऐसे किया। लेकिन उस समय अगर हम एक सकारात्मक सोच मन में लाते हैं, चलो कोई बात नहीं, जान बची लाखों पाए, इतना ही हुआ, बड़ी बात नहीं हुई, हम सब बच गए, समय बच गया, चलो थोड़े में ही निपटारा हो गया, हाँ सूली से कांटा हो गया, तो हम उसको एक बड़ा पॉजिटिव लेंगे, और शायद एक दो के गले भी मिलेंगे, एक दो को थैंक्स भी देंगे कि चलो सब बच गए। लेकिन हम वो बात नहीं सोचते हैं, हम हर वक्त कोई ना कोई नेगेटिव बात सोचते हैं। तो नेगेटिव बात सोचना तो बड़ा सहज है, पॉजिटिव सोचने में मेहनत है, इसीलिए मन अशांत हो जाता है।
बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात कही कि यही सिचुएशन अगर हम थोड़े से अपने विचारों को बदल लें, थोड़ा सा उसको पॉजिटिव कर लें। प्रॉब्लम ये है शीलू बहन जी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो ये विचार जो हैं, एक कॉन्टिन्यूटी है। सुबह से ही अगर हमारी ज़िंदगी शुरू, अगर हम देखें दिन की शुरुआत ही देखें, इतनी सारी एंग्जाइटीज़ को ऑलरेडी लेकर अपने बैक ऑफ द माइंड हम लेकर चल रहे होते हैं, तो ज़रा सा भी कुछ ऐसा घटता है या नहीं घटता, संभावना भी होती है घटने की, वी लूज आउट आर कंट्रोल। सो वो जो कंटिन्यूस बैकलॉग चल रहा है हमारे नेगेटिव थॉट्स का या हमारी एंग्जाइटी लेवल्स का, वो मुझे लगता है कि एक और बहुत बड़ा कारण है कि शाम तक आते आते तो हम बिल्कुल सब कुछ अपनी आत्मा का दे चुके होते हैं उन्हें।
या इसीलिए क्या है, गाड़ी के अंदर भी एक ब्रेक होती है, एक्सेलरेटर होता है, तो ब्रेक भी पावरफुल चाहिए, तब गाड़ी ठीक चल पाएगी, एक्सीडेंट से बच सकेंगे। अगर ब्रेक पावरफुल नहीं है तो एक्सीडेंट्स होने की संभावना है। इसी प्रकार हम अपने मन को नो कह सकें, नहीं मुझे ऐसे नहीं सोचना है, अगर हम मन को ऐसे ऑर्डर कर सकते हैं तो हम नेगेटिविटी से बच सकते हैं। एक तो हम नो करें, जिसको हम कहेंगे एक है नॉट, दूसरा है डॉट। डॉट माना हम कई बार इतने व्यर्थ सोच में चले जाते हैं, बीती बातों को याद करने लग पड़ते हैं, उसमें ही दुखी हो जाते हैं, उसी में अशांत हो जाते हैं, ऐसे हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, या इतना भविष्य में चले जाते हैं, या जैसे शेख चिल्ली के हवाई किले बांधने लगते हैं, तो परिणाम स्वरूप फिर सोचते हैं कि ये तो होना असंभव है, हवाई किले तो बांध लिए, लेकिन इस हवाई किलों में रहेगा कौन, कैसे बांधेंगे, या बांध भी लेंगे तो क्या होगा, परंतु उसका नतीजा तो कुछ भी नहीं। इसीलिए समय भी व्यर्थ, हमारी शक्ति भी व्यर्थ, हमारे विचार भी व्यर्थ, फिर दिन के अंत में हम से सोचते हैं कि आखिर मैंने क्या पाया, तो लगता है कि हम तो हाथ खाली रह गए, तो मन और अशांत हो गया, या फिर पश्चाताप के आंसू बहाते, ऐसे नहीं करता होता तो ये नहीं होता था, अब बात तो हो गई, तो इसलिए हम उसको कहते हैं डॉट लगाओ।
जी बहुत सुंदर आपने बात कही। तो रीते हाथों की आपने बात की, रीता रीति जिंदगी, रीता दिन, खाली हुआ हुआ दिन अगर गुजरता है, या पश्चाताप से भरा दिन गुजरे या शाम गुजरे, तो उससे बचा कैसे जा सकता है, क्या प्रैक्टिकल तरीके से मैं शांति की तरफ जा सकती हूँ। आपने कहा एक जर्नी है, जिंदगी की जर्नी में क्या मैं पीस का जो एक पीस तक पहुँचने का एक सफ़र, या पीस को अपनाने का जो एक पूरा पूरा एक जर्नी है, उसको भी मैं शामिल कर सकती हूँ, क्या ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं?
बिल्कुल कर सकती हूँ। बीच बीच में हमें भीतर में जाने का एक अभ्यास चाहिए। जैसे हम बीच बीच में कई बार मेकअप करते हैं, अपना मुखड़ा आईना में देखते हैं, तो जैसे वो बाहर का आईना है, इसी प्रकार अंतर आत्मा को भी देखने का आईना है, स्वयं को पहचानना। तो वो पहचान हम स्वयं को दें कि वास्तव में मैं एक आत्मा हूँ, और मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। ये बार बार हमें अपने आप को रिमाइंड कराना है, वो जैसे गीत भी गाते ना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और पुण्य है तेरे जीवन में। तो ये आत्मा अपने आप को देखती है, अपने आप से पूछती है, जिसको हम कहते हैं आत्मनिरीक्षण करती है, आत्मचिंतन करती है, आत्मविश्लेषण करती है, जिसके आधार से हम अपने आप को ही ये समझाते हैं कि अरे मन तू कहाँ जा रहा है, शांति तो तेरे पास ही है। इसलिए हम लोग मंत्र देते हैं ओम शांति, ओम शांति अर्थात तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, मन तुम्हारी एक शक्ति है, उसको पहचानो, मन को अपना मित्र बनाओ, उसमें श्रेष्ठ सोच लाओ, तो ये श्रेष्ठ सोच ही आपके जीवन में शांति प्रदान करेंगे।
बहुत सुंदर आपने बात कही कि श्रेष्ठ सोच लेकर आना, लेकिन वो भी आज के इस दौर में, आज के इस वक्त में, जब इतनी सारी और सोच हमारे पास है, हमें लगता है कि हम बंधे हुए हैं उनसे, उन जो परेशानियां हैं, जो हमने अपने लिए निर्धारित किए हुए जो मंजिलें हैं वो निर्धारित की हुई हैं, वहाँ तक पहुँचने में ही हमें इतना सारी चीज़ें चाहिए। तो ये पॉजिटिव जो आपने कहा, श्रेष्ठ सोच की बात जो आपने की, वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ऑब्स्टिकल्स बनती हैं। बहुत सारी रुकावटें हमें डेफिनेटली आ रही हैं आज के वक्त में। जब तक हम सुन रहे हैं तब तक तो हमें ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, जितने भी हमारे दर्शक दिख रहे हैं, मैं भी जब तक यहाँ हूँ मुझे ये बात बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि यही मैं चाहती हूँ या यही वो सब हम सब चाहते हैं। लेकिन इसकी कॉन्टिन्यूटी बनाए रखूँ, सुबह मैंने ये बात सुन ली, ठीक है, सुबह सुबह मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया या जब भी किया तो लोगों ने सुना तो ये बात दिमाग में रही, लेकिन ये क्या पूरे दिन मेरे साथ चलेगी? कुछ ऐसे आज के जो हम लोग हैं वो बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, सो कॉल्ड, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके हैं हमारे पास जो हम इसको दिन भर अपने साथ रखें? दिन भर रखेंगे तो हफ्ते भर भी रख सकते हैं, हफ्ते भर रखेंगे तो महीने भर रख सकते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी सोच का ये हिस्सा बन जाए।
बिल्कुल रख सकते हैं। इसलिए ये कंटिन्यूटी बनाने के लिए हर वक्त हमें अंदर जाने के लिए समय निकालना पड़ेगा। जिस प्रकार हम दूसरों को समय देते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं, उनसे बातें करते हैं, इसी प्रकार खुद से भी बातें करनी होगी, अपने आप से पूछना होगा आखिर मैं क्या चाहती हूँ, मुझे कहाँ जाना है। तो ये चाहना जो हम रख रहे हैं उसके आधार पर मैं अंदर जाऊँ और भीतर में अपने आप को वो स्वरूप देखूं, खुद को ही मैं समझाऊं कि मैं एक तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूं और मैं उस शांति की शक्ति को भीतर में देखूं और भीतर में देख करके उसको भीतर ही अनुभव करूं। यही वास्तव में मेडिटेशन है। इसी मेडिटेशन को हम बीच बीच में हर घंटे घंटे एक मिनट अभ्यास करें। देखो जैसे हमें प्यास लगती है हम समय निकाल कर पानी पीते हैं, हमें थोड़ा सफोकेशन होता है तो खुले में हम घूमते हैं, हमें एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल वर्क करना है, हम करते हैं, यानी ये जैसे बॉडी को ज़रूरी है, भूख लगती है तो भोजन खाते हैं, समय निकालते हैं ना, तो ये भी अपनी आत्मा के लिए समय निकालना पड़ेगा। और ये बीच बीच में चाहे हर घंटे एक मिनट ही से, जैसे शरीर को भोजन देते हैं तो शक्ति आती है, ये आत्मा को शक्ति देने का तरीका है मेडिटेशन। और एक मिनट के अंदर चाहे एक सेकंड ही सही, हम उसी समय अपने अंदर चले जाएं और क्या महसूस करें कि मैं एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ और मैं शांत स्वरूप हूँ। तो अपनी संकल्पों की स्पीड को कम कर दें, अपने साथ अपने आप को कहें ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, तो एकदम हम शांत हो जाएंगे। तो जब भी मन टेंशन में आए, मन बेचैन हो जाए, एंग्जाइटी हो जाए, तो हम अपने आप को ओम शांति का पाठ पक्का करा दें तो हमें बहुत शांति मिलेगी उस समय।
बहुत सुंदर आपने बात कही कि क्योंकि ये एक पूरा प्रोसेस है, ये एक जर्नी है, जैसा कि आपने कहा ओम शांति ये भी बात कर रहे हैं, लेकिन आज अभी साथ में आपने कहा कि मेडिटेशन करें। बहुत बड़ा सवाल आज आम आदमी के सामने ये है कि मेडिटेशन, बिल्कुल बहुत लोग बोलते हैं आप मेडिटेट कीजिए, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं बोलते हैं मेडिटेट कीजिए, कोई काउंसलर के पास जाते हैं वो बोलते हैं मेडिटेट कीजिए, कैसे की जाती है मेडिटेशन? सब अपने अपने तरीके से कहा जाता है कि अपने विचारों को ना आने दें, कुछ ना करें, क्या हम मन को ऐसे विचारों विचार शून्य बना सकते हैं कुछ लम्हों के लिए भी? क्या ये संभव है प्रैक्टिकली? या मेडिटेशन का क्या प्रोसेस है? क्या हमें आप उस पूरे प्रोसेस के साथ ले जा सकती हैं कि शांति तलाशने के लिए हर रोज़ क्या वो टेक्निक अपनाएं कि हम अपने साथ वक्त गुजार पाएं?
तो हम सब श्रोताओं को बताना चाहेंगे ये बात कि किस प्रकार हम मेडिटेशन करें। तो राजयोग मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाई जाती है, इसमें हम कहते हैं कि मन को दमन मत करें पर मन को अमन करें। कैसे अमन करें? सुमन करके अमन करें। अब ये शब्द है दमन, सुमन, अमन। तो दमन माना सप्रेस, हमें मन को सप्रेस नहीं करना है पर मन को सुंदर विचार दे करके शांत करना है। अब कैसे हम उसे शांत कर सकते हैं सुंदर विचार दे करके? क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। अगर हम सोचते हैं मैं अशांत हूँ तो कोई हमें शांति नहीं दे सकता है। इसलिए मेडिटेशन का प्रोसेस है कि मैं अपने मन को ये विचार दूं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और हो जाए शांत। एक सेकेंड में शांत हो सकेंगे, ये देह की इंद्रियां भी शांत हो जाएगी। जो इनवॉलंटरी एक्शंस है वो तो अपना काम करेंगे, लेकिन एक कछुआ जिस प्रकार अपने अंगों को समेट लेता है वैसे मैं भी ये देह के अंगों को समेट करके शांत हो जाऊं और शांति की शक्ति अपने अंदर अनुभव करूं। ये शक्ति बढ़ सकती है कैसे? जब मैं शांति के प्रकंपन औरों तक भी पहुंचाऊं, अनेक आत्माएं जो अशांत है उनको भी मैं शांति का दान दे सकती हूं। तो मन से, वचन से, कर्म से हम शांति का दान दे सकते हैं। और मुझे विश्वास है, ये आपको मैं बताना चाहूँगी, कि इससे व्यक्तिगत शांति होगी, परिवार में शांति होगी, मेरे मोहल्ले में शांति होगी, सारे समाज में शांति होगी, देश में शांति होगी और विश्व में शांति होगी।
चिरू बहन, आपने बहुत ही खूबसूरत बात ये कही कि स्व से शुरू होके घर में शांति, फिर समाज में, फिर देश में, फिर पूरे विश्व में। जिस तरह से भारत प्रतीक भी माना जाता है विश्व शांति का, आज पूरा विश्व देख रहा है भारत की ओर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम में वो अध्यात्म है, वो सौहार्द है, वो सेंसिटिविटी है, वो वार्मथ है। लेकिन हम आपके ब्रह्मा कुमारी जो संस्थान है उसकी बात करते हैं कि किस तरह से वो भी ग्लोबल पीस के लिए बहुत काम कर रहा है, किस तरह से अचीव किया जा सकता है और कौन सा रास्ता आप दिखा रहे हैं विश्व को?
हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जैसे 1986 पीस ईयर घोषित किया गया था, तो उसी समय हम लोगों ने एक बहुत सुंदर कार्यक्रम किया था, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील। तो सारे विश्व में हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए थे, समझते कम से कम 130 देशों में तो किए ही होंगे। और हम सबको यही कहते थे कि आप एक मिनट शांति का दान दीजिए, चाहे प्रेयर्स के द्वारा, चाहे मेडिटेशन के द्वारा, चाहे आप जो भी करते हैं शांति के लिए उस रूप से आप शांति का दान दीजिए। और कईयों को तो हमने ये भी सिखाया कि किस प्रकार आप अंदर में सोचिए कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो इसका इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। जो हमने मिलियन मिनट्स तो क्या बिलियंस ऑफ मिनट्स जैसे इकट्ठे कर लिए, और उसके आधार पर हमने यूनाइटेड नेशंस को ये कहा कि कैसे हमारे देशों में ये मिनट्स ऑफ पीस इकट्ठे किए हैं, तो उन्होंने हमें एक इंटरनेशनल अवार्ड और 6 नेशनल पीस अवार्ड्स दिए थे। इट वॉज़ अ वेरी बिग थिंग। और हमारी दादी प्रकाशमणि जी खास यूनाइटेड नेशंस में गए थे वो पीस मैसेंजर अवार्ड लेने के लिए।
लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड, जो सबसे बड़ा आपका धन संचय था, वो जो आपने पीस के जो लम्हे थे वो इकट्ठे
इसके आधार से लोगों को ये महसूस हुआ कि हम एक एक व्यक्ति इसके लिए निमित्त हैं। हम केवल शांति 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 चिल्लाए नहीं, बोले नहीं, पुकारे नहीं, लेकिन शांति तो मेरे पास है और मैं उसको भीतर से पहचानूं। तो अगर हर एक व्यक्ति अगर अपने भीतर से ये शांति का चिंतन कर उसे अनुभव करेगा, तो जिस प्रकार बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ये शांति की बूंद एक एक से प्राप्त होगी तो विश्व में शांति आएगी। कई लोग क्या सोचते हैं कि विश्व में शांति होगी तब मुझे शांति होगी। इट्स नॉट दैट वे। इंडिविजुअल पीस विल लीड टू वर्ल्ड पीस, नॉट वर्ल्ड पीस विल लीड टू इंडिविजुअल पीस।
ब्यूटिफुल द वे यू पुट इट एक्चुअली। कि और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हम ये जानते हैं, हम कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर है या शक्ति हमारे ही अंदर है, उसी तरह से शांति भी हमारे अंदर है।
शांति भी तो एक शक्ति है ना।
बिल्कुल।
और वो शक्ति मेरे पास ही है और केवल एक सोच की दूरी पर है। वो सोच हमें लाना है तो शांति हमारे पास है।
माइंडसेट शिफ्ट होते ही हम बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल
एक लम्हे में जिंदगी बदल जाती है अगर सोच बदल जाए तो।
जी, जी,
आज आपसे हमारी मुलाकात रही और आपने हमें वो एक कहा जाए एक मंत्र दिया है, गुरु मंत्र दिया है, एक सोच को बदलने का एक रास्ता दिया है जिसमें अगर हम वो सोच लें तो शायद हम उस रास्ते पर चल पाएं जिसे हम तलाश रहे हैं, जो हमारा ही स्वरूप है। शीलू बहन, आज आपसे बातचीत रही, बहुत शांति का अनुभव मुझे खुद को हो रहा है। ओम शांति सिर्फ एक शब्द न रह के अपने अंदर एहसास जो है वो जागृत हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बताएं कि आज जो ये बातचीत रही उसमें यही बात हमारे सामने आई कि मूल्यों की अगर हम बात करते हैं, उन्हें जीवंत करने की कोशिश करते हैं, तो ये पहचानना ज़रूरी है कि आत्मा का मूलभूत स्वरूप शांति ही है। तो क्यों ना आज जिस शांति की हम बाहर तलाश कर रहे हैं, जैसा कि शीलू बहन ने भी कहा कि विश्व शांति के बाद हमारे अंदर शांति नहीं आएगी, बल्कि हम जब स्वयं शांत होंगे तब हम विश्व शांति की बात भी कर सकते हैं। कल हम चर्चा करेंगे स्नेह की, प्रेम की। आप हमारे साथ ज़रूर शामिल होइएगा। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल द्वारा या फ़ोन द्वारा अपने विचार या आपके मन में कोई बात उठ रही है या मूल्यों को जीवंत करने का आपका कोई प्रयास है, आप हमें सूचित कर सकते हैं। आप हमें मेल कीजिए omshantistudio@gmail.com और चाहें तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 9873666555 पर। और इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इस वादे के साथ, इस दुआ के साथ कि आज जिस शांति के रास्ते को हमने तलाशने की कोशिश की है, स्व को पहचानने का प्रयत्न किया है, उसे हम ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। नमस्कार। ओम शांति ओम।